Bakma. जय जय श्री राधे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय हो कीर्तनीय सदा हरि हरे हरे राम हरे राम राम हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सिद्धार्था कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 29। श्रीशुक उवाच स्वानां विभीषण चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यदुक्तं सांपरायिकम्। माताएं शब्दार्थ श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा स्वानाम स्वजनों का विभीषण रावण का भाई तथा रामचंद्र का भक्त जो विभीषण नाम से विख्यात है चक्रे संपन्न किया कौशलेंद्र अनुमोदित कौशल के राजा भगवान रामचंद्र द्वारा अनुमोदित। जय राधा की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। पितृमेद विधानेन पिता या किसी परिजन की मृत्यु के बाद संपन्न होने वाली अंत्येष्टि कर्म यत उक्तम संस्तुत संपरायिकम नरक जाने से बचाने के लिए मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म। अनुवाद एवं तात्पर्य दिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा रावण के भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक में जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। तात्पर्य एक शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य दूसरे शरीर को प्राप्त करता है किंतु कभी कभी यदि वह अधिक पापी होता है तो उसे दूसरे शरीर में देहांतर करने नहीं दिया जाता जिससे वह प्रेत बन जाता है। मृत व्यक्ति को प्रेत जीवन से उबारने के लिए शास्त्र विहित अंत्येष्टि कर्म या श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। रावण का वध भगवान रामचंद्र द्वारा हुआ था अतएव उसे नरक में जाना था किंतु भगवान रामचंद्र की सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतक के लिए संस्तुत सारे कर्म संपन्न किए। इस तरह भगवान रामचंद्र रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे। तो श्रीमद् भागवतम का नवम स्कंद का यह पवित्र प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र और उनके दिव्य लीला और उनके विशुद्ध परिकरों का संक्षेप में चरित्र सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? श्री शुक जो अनंत ज्ञान संपन्न है और जिनकी चित्तवृत्ति वैराग्य पूर्वक विशुद्ध भाव से भगवत चरणारविंद में लगी है ऐसे परम वैराग्य चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी उस गंगा तट पर सुना रहे हैं। बहुत ही भगवत लीला आवेश चित्तवृत्ति है और कीर्तन भक्ति के आचार्य है इसलिए लीला बड़े आनंद से कह रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। श्री शुक, जब सुखदेव गोस्वामी का पदार्पण प्रथम दिन उस शुक्रताल की पवित्र भूमि गंगा तट पर हुआ, तो व्यास जी ने लिखा है भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में कि जैसे ही सुखदेव जी पधारे तो उनकी अद्भुत झांकी थी, और जब वो महाआसन पर उस सभा में विराजे, देवर्षि राजर्षि तो देव ऋषियों की और राजर्षियों की सभा में सुखदेव जी कैसे लग रहे थे। सब यरोच तालम भगवान यथेन्दु ग्रहक्ष तारा निकरे परित, जैसे आकाश में ताराओं के बीच पूर्णिमा का चंद्र जिस तरह शोभित होता है, ऐसे ही महामुनि श्री सुखदेव जी उस महासभा के सिंहासन पर विराज रहे थे। प्रशांत मासीन मकुंठ मेधस, सुखदेव जी के विषय में सूत जी ने कहा है नैमिषारण्य में कि जब वो व्यास पीठ पर विराजे प्रथम दिन तो प्रशांतम प्रकृष्ट रूपेण शांतम, जिनकी बुद्धि समस्त विषयों से वैराग्य पूर्वक भगवत हरि चरणारविंद में शांत हो चुकी थी, प्रशांतम। और अकुंठ मेधस, सुखदेव जी की मेधा जो बुद्धि है उसके लिए एक विशेषण दे रहे सूत जी अकुंठ। कुंठ शब्द का अर्थ होता है स्खलित होना, टूटना, ब्रक। और अकुंठ जिनकी बुद्धि का कोई पारावार नहीं था, ऐसा नहीं कि वे भागवत कथा कहने के लिए आए तो कुछ पोथी पोथा या चौपड़ी साथ में लाए थे या कुछ रटते हुए आ रहे थे, जैसे हम लोग कथा करने जाते बैठते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी जो बोलना है वो तो बोल ही नहीं पाते और दूसरा ही कुछ भगवत विषय से या प्रसंग से विपरीत ही बातें हो ही जाती है। ये बद्ध जीव के स्वाभाविक दोष है, लेकिन सुखदेव जी जैसे वक्ता के लिए सूत जी नैमिषारण्य में कर अकुंठ मेद, बिल्कुल शांति से बैठे थे और सभा के बीच चंद्रमा जैसे शोभित हो रहे थे और भगवत तत्व या भगवत लीला के मानो समुद्र थे उनकी बुद्धि, बिल्कुल शांत भाव से। हम इसीलिए केवल 2-5 मिनट श्री शुक उवाच पर स्मरण दिलाना चाहते हैं क्योंकि इस तरह का वर्णन सूत जी ने किया उस 19वें अध्याय में, और जब राजर्षि परीक्षित बोले एषाम संस्मरणात् अद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, अगर सुखदेव गोस्वामी का कोई स्मरण करे तो वो अपने घर परिवार सहित पवित्र हो जाता है, शुद्ध्यन्ति। सद्य क्रिया दी गई है एषात् संस्मरणात्, ये सुखदेव गोस्वामी के वपु का या उनकी अकुंठ बुद्धि भगवत लीला का सुखदेव जी का इन केन प्रकारेण कैसे ही कोई स्मरण करे तो शुद्ध्यन्ति, वो तत्काल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध से अर्थ है रजस तमस के प्रभाव से प्राय मुक्त हो जाता है, सात्विक अवस्था पर आ जाता है जो भगवत भक्ति के लिए अनुकूल अवस्था है, ज्ञान के लिए सत्व गुण अवस्था चित्त की। इसीलिए श्री शुक उवाच भी श्लोक में माना गया है कुछ वैष्णव के द्वारा। और नारद पंचरात्र में एक जगह तो लिखा गया है मुहूर्तम वा अर्ध मुहूर्तेन यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, अगर कोई कृष्ण लीला जिसके हृदय में है ऐसा वैष्णव एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त कहीं तिष्ठन्ति बैठ जाए टिक जाए, सत्यम सत्यम पुनम सत्यम तीर्थम तपोवनम गमन, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, है मुनि मैं सत्य तुमसे कहता हूं। वैष्णव जहां बैठ जाए जिस स्थान पर जो भगवत भक्त हो तो चाहे आधा मुहूर्त ही बैठ जाए तो वो जगह परम तीर्थ हो जाती है। और ये तो भागवत में भी आया है, तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को भी तीर्थ करते हैं। जब वैष्णव के लिए ये बात बताई गई है तो महाभागवत वर्ज द्वादश महाजनों में भी जिनका, ऐसे सुख जी के लिए क्या कहना, वो जहाँ बैठ जाए और मुहूर्त अर्ध मुहूर्त है ना, 7 दिन बैठे हैं स्थान पर भगवत लीला चित्तवृत्ति में भर कर। तो शुक मुखाद अमृतम, प्रभुपाद जी की परम करुणा है कि इस कान के माध्यम से आज विश्व भर में ये शुक मुख से निकला हुआ अमृत प्राप्त हो रहा है जो वास्तव में जीव को अमरत्व प्रदान करता है। तो ऐसे श्री सुखदेव जी रामचंद्र जी के महान अति मानवीय अलौकिक, जिसको शास्त्रीय शब्दों में हम दिव्य कह सकते हैं, ऐसे कर्मों को संक्षेप में परीक्षित से सुना रहे हैं। देखिए शास्त्रों में हम चारों युगों के वेद पुराण इतिहासों की चर्चा करें तो प्रधान रूप से 2 ऋषियों का नाम है, एक तो महर्षि वेदव्यास जी और द्वापर के अंतर्गत, लेकिन उसके पहले त्रेता या कली में, तो त्रेता में वाल्मीकि जी जिन्होंने भगवत रामचरित का पूर्णतः अपने चित्तवृत्ति को नित्य में धारण किया, इसी का संकेत सुखदेव जी ने भी दिया, तस्यानुवर्णितम भूरी, हे राजर्षि इस रामचंद्र जी के पवित्र चरित को बहुत बार महर्षि और ऋषि मुनियों ने गाया है पूर्व, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। तो पूर्ववर्ती ऋषियों से तात्पर्य वाल्मीकि जी का ही प्रधान रूप से है, जिन्होंने रामलीला का पूर्णतः जगत के सामने प्रकाशित किया लीला को। तो श्री व्यास जी और वाल्मीकि जी, शास्त्रों में हम मनुष्यों के लिए ये 2 ऐसे ऋषि हैं जिनके वचन को वेद माना गया है। व्यास या वाल्मीकि के वचन से बढ़कर कोई श्रेष्ठ वचन नहीं है, और हम कई बार कहे हैं प्रवचनों में शास्त्रों की वो सुंदर बात, व्याचो उशिष्टम जगदम, ये जारा भी कुछ है शास्त्र, वो व्यास का उचिष्ट है, सब व्यास जी बोले हैं, वेद भगवान उन्हीं के शिष्य परशिष्य धारा में प्रवाहित हुआ है ये ज्ञान। लेकिन समस्त ज्ञान उपनिषद पुराणों के किंग, राजा जिसको कहा गया है, यह भागवत को धारण करने के लिए बद्रिका आश्रम में तपस्या करके जिस भगवान की परम करुणा का ही, कृपा का ही प्रसाद माना गया है, ऐसे श्री बादरायणी सुखदेव जी जो भागवत के लिए स्पेशल जिसका आविर्भाव कराया गया, प्रकट कराया गया, तो जो अन्य ऋषियों में वो नहीं दिखा व्यास जी को, उनके शिष्य प्रशिष्य जैमिनी व्यास वैशंपायन आदियों में, जिसके लिए सुख जी को प्रकट कराया गया स्पेशल, और जन्म से पहले ही ब्रह्मलीन माया मुक्त भगवत कृपा प्रसाद। अब ऐसे सुखदेव जी के मुख की वाणी से विशेष क्या है जगत के लिए, मनुष्य के लिए, और पुराणों में व्यास जी के ही द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि मानव तनु धारण करके शुकमुखाद अमृत गाथा न श्रीनवंती, जिन्हें सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ भागवत कथा नहीं गाया नहीं सुना तो वृथा एव जन्म, उसका जन्म बेकार है। जननिम दुख भाजा, वो अपनी माँ को केवल दुख देने के लिए जन्म लिया। अब इतनी बड़ी बात बोल देना कि उसका जन्म बेकार है, तब इस बात पर जब हम विचार करते तब प्रभुपाद जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना पड़ेगा मानव समाज को कि इन्होंने भागवत को यथार्थ रूप में मानव समाज को ही नहीं, विशेष रूप में वैष्णव जगत को दिया। पूरे मनुष्य के लिए महामंगल, लेकिन जो वैष्णवों का वास्तविक धन है उसको प्रदान किया प्रभुपाद जी ने। और विशेषकर वैष्णव जगत के अंतर्गत भी हम हमारे संस्था की बात करें इस्कान की, तो हम भक्तों के लिए तो सबसे बड़ी उपाधि नित्यम भागवत से शास्त्रों का यह श्लोक और यह शिक्षा को इस्कान में चरितार्थ किया भक्तिवेदांत स्वामी ने, स्थापित कर दिया। चाहे फिर प्रेम से करिए या बाय फोर्स, करना ही है नित्यम भागवत सेवन, चाहे प्रेम से करिए या बाय, लेकिन करते करते प्रेम हो जाएगा। क्योंकि साध्य साधन अवस्था यही है। भागवत के श्रवण कीर्तन की ये भक्तिमय अवस्था साध्य भी है और साधन भी है। इसीलिए हम वैष्णव को बड़ी उत्कंठा, उत्साह, श्रद्धा, आदर पूर्वक भागवत का अध्ययन करना है, क्योंकि कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण ये प्रेम ग्रंथ है। शुक उवाच, जो शुक जी के मुख से निकला है, तो प्रसंग के अंतर्गत सुखदेव जी कह रहे हैं कि विभीषण स्वानाम, विभीषण स्व आनाम अपने, विभीषण अपने, अपने मतलब अपने प्रियजन बंधु बांधव, कौशलेंद्रानुमोदित, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को यहां सुख जी कौशलेंद्र कह रहे हैं। प्राचीन युगों में इतिहास ये प्रमाण करता है कि किसी राजा की प्रिय पुत्री या किसी राजा की मानवंती प्रिय रानी के ही नाम पर देश का नाम हो जाता था। एक कौशल्या दशरथ जी की रानी है मुख्य, और अयोध्या को कौशलपुर कहा जाता है, और इंद्र माने उस प्रदेश के, उस प्रांत के स्वामी राजा, इसलिए रघुनाथ जी को कौशलेंद्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी को पकड़ लिया गया और रावण की सभा में उपस्थित कर दिया गया, और रावण ने पूछा हनुमान जी से, आप कौन है आप कपि, तो हनुमान जी ने यही उत्तर दिया, दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलपुर के इंद्र श्री राघवेंद्र उसका दास हूं। अपना परिचय देते हुए, वो तो स्वरूपगत अवस्था में थे ना, हमारी तरह कोई होते तो दे ही देते, पटेल, गुजराती, जो भी कन्नड़, ब्राह्मण जो, लेकिन वो तो स्वरूपभूत अवस्था में कि उसको पता है कि मैं राम का दास हूं, इसलिए अपना पवन पुत्र या अंजनी पुत्र ऐसा कोई परिचय नहीं दिए। रावण से सीता कहते हैं कि हम राम के दास हैं और तुम काम के दास हो, काम से वशीभूत हो चुके हो पूर्णतः, पतन को निमंत्रण दे चुके हो, कामांधो नैव पश्यन्ति, तीन चार प्रकार के अंधे होते हैं, इसमें एक कामांध है, एक तो आंख का अंधा है ही है, और एक बुद्धि से अंधा हो जाता है, जड़ता, जड़ांध, और एक मद, धन और ज्ञान के, धन बढ़ जाए या ज्ञान बढ़ जाए तो उससे भी व्यक्ति अंधा हो जाए, उसको मदांध कहते हैं। तो ऐसे ये कामांध होता है तो उसको फिर सही बात, विवेक नष्ट हो जाता है। रावण की यही अवस्था प्रस्तुत की गई है, कामांध, मदांध भी कहीं कम नहीं था रावण, मद भी बहुत था, इसीलिए तो सारा ज्ञान और बीज बल आदि सब विपरीत हो गया ना। हनुमान जी के द्वारा भी वहां कौशलेंद्र, कई जगह पर कौशलेंद्र राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण आदि शास्त्रों में आया है। यहां पर भी सुखदेव जी कह रहे हैं कि कौशलेंद्र अनुमोदित, अनुमोदन शब्द का अर्थ आप समझते होंगे कि प्रसन्न चित्त से दी हुई आज्ञा, यहां पर यह अर्थ, ऐसे स्थान स्थान पर कुछ और भी अर्थ होता है, लेकिन यहां से क्या प्रयोजन, यहां सुखदेव जी का प्रयोजन है कि भगवान श्री राम जी ने प्रसन्न चित्त से विभीषण से कहा कि तुम्हारे ये जो मरे हुए बंधुजन है इस युद्ध में, उसका तुम पितृ मेद विधान न, जो भी श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि शास्त्र उचित क्रिया होती है उसको संपन्न करो, क्यों, उसको करने से असंपरायकम, जीव अपने कर्मों के कारण नरक आदि या दुर्गति में जाने वाला होता है, लेकिन उसके बंधु बांधव जिसका दैहिक संबंध के कारण कुछ आसक्ति और सूक्ष्म शरीर से संपर्कित उसकी चेतना, मन से मेरा अपना मानना, आसक्ति, ये अविद्यामय अवस्था है ये, लेकिन माइक जगत में यही प्रमुख है ना इस गुणा जगत में, तो वो उसको उद्देशित करके शास्त्र के अनुसार करने से उसकी कुछ गति होती है, जिसको भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि रावण असुरी प्रवृत्ति के कारण दुर्गति को प्राप्त होने वाला। प्रभुपाद जी ने तो यही लिखा है, देखिए हम पढ़ रहे हैं, रावण का वध भगवान रामचंद्र द्वारा हुआ था, अतएव उसे नरक में जाना था, सीधा लिखा है, आप विचार करिएगा इस पर।
लेकिन किंतु भगवान रामचंद्र की सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतक के लिए जो संस्तुत कर्म संपन्न किए और रावण के उद्धार के लिए मरने के बाद भी, अब ये जो बातें हैं एक छोटी सी, इसमें कई विचारणीय बातें हैं कि भाई शास्त्र के द्वारा किया हुआ, परिजनों के द्वारा श्राद्ध पिंड आदि विधि विधानोक्त कर्म उस जीव की गति पर असर करता है, इफेक्ट करता है। एक विचारणीय बात तो है कि ये मानव शरीर में महत्व इतना है कि उसके पीछे हम तो कुछ किए नहीं जीवन भर पाप के अलावा, लेकिन हमारे प्रिय बंधु बांधव कुछ पीछे कर दे तब भी जीव की गति होती। कितना उपकारी मानव समाज है, भले अविद्या वही है फिर भी। अब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के लिए कुछ विधि विधान श्राद्ध कर्म करता है तो उनकी उनके आध्यात्मिक कुछ उसको पता नहीं, वो मोहवश करता है, आसक्तिवश करता है दैहिक, लेकिन फिर भी शास्त्र से करता है और जीव की कुछ ना कुछ गति कर्मानुगति में अंतर पड़ता है। तो मानव समाज उपकारी हुआ ना, मरने के बाद भी बंधुजन उपकार करते हैं देखा गया है। एक तो ये विचारणीय बात है और दूसरी शास्त्र के श्लोकों और मंत्र और विप्र ब्राह्मणों द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव देखिए कि स्थूल शरीर को छोड़ा हुआ जीव भी गति प्राप्त करता है। ये भी हमारी साइंटिफिक बुद्धि से परे है ये बात। आज के साइंस के अनुसार अगर आप सोचेंगे तो बोलते क्या है, ऐसा कौन देखा, कौन मानता, किसके पता। लेकिन शास्त्र प्रमाण है। और स्पेशल भगवान रामचंद्र जी कह रहे अनुमोदित, इस शब्द पर प्रभुपाद जी का यही लाइन है कि रामचंद्र जी रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे। देखिए भगवान की करुणा कि जो रावण पूरा पाप अत्याचार और क्या क्या किया है, लेकिन मरने के बाद भी रावण का भला हो इसलिए विभीषण से कह रहे हैं कि इनके लिए श्राद्ध कर्म करो। वो अकारण करुणा वरुणालय भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, ये बात यहां सार्थक होती है कि उनका भी हित चाह रहे हैं इसलिए विभीषण से कहने, तो कहते इसका कुछ मत करो, छोड़ो उसको, मरने तो जो गया सो गया। अगर सामान्य देव कोटि का या बुद्धि मनुष्य की बुद्धि होती तो यही कहता ना। लेकिन भगवान राम मर्त्यावतारण मर्त्य शिक्षण रक्षा अवधाय न केवलम, केवल राक्षसों को मारने के लिए ही तो नहीं आए हैं ना, मनुष्य को अपने चरित्र से कुछ शिक्षा संदेश देने आए हैं। और क्या संदेश है, रामचंद्र जी के जीवन के पवित्र मुख्य संदेशों में एक संदेश है हम लोगों के लिए, विशेषकर वैष्णवों के लिए, कि अपना बुरा करने वालों का भी भला चाहना और करना। ये मुख्य संदेश है अपना, यही तो वैष्णवता है ना। अरे भाई जो भला करे उनके साथ भला करे, अच्छा करे उनके साथ अच्छा करे, तो ये तो मानवता के नाते ठीक है, लेकिन वैष्णवता तो इनसे ऊपर है। मंद कर जो उसका बुरा करता है उसका भी भला करता है। रावण भगवान रामचंद्र जी का ये पवित्र चरित्र है, आपको ये कई लीलाओं में ये देखने सुनने मिलेगा कि उनका अपहित करने वालों का भी भगवान हित चाहते हैं, तभी तो भगवान है। इसीलिए हम ये संदेश प्राप्त करते हैं इन प्रसंग से कि हमें हमारी बुद्धि को, हमारे वाणी वर्तन व्यवहार को इतना विनम्र मधुर बनाना है कि जो हमारा द्वेष करता है, बुरा करता है, उनका भी हमें भला करना है। भगवान को अगर प्रिय बनना है तो भगवान के हृदय में आपको राज करना है तो ये अवस्था प्राप्त करनी होगी। और वैष्णव आचार्यों में ये हमें दिखा है, कई वैष्णव के चरित्र को आप सुनिए पढ़िए तो ये गुण निखर जाता है, प्रकट हो जाता है कि उनका बुरा करने वालों का भी भला ही चाहते हैं और भला करते हैं। और शत्रु भी अगर सामने आ जाए तो इतना मधुर प्रेम, विनम्र सेवा, केवल आडंबर नहीं, दंभ नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वास्तविकता, हृदय की ये सत्यता होनी चाहिए कि शत्रु भी पिघल जाए। ऐसे रावण भले वैर किया, युद्ध भी किया, लेकिन रामायण के कई प्रसंग है जिसमें रावण स्वयं अपने श्री मुख से राम की प्रशंसा किया है। शत्रु भी प्रशंसा करे, ऐसी वैष्णव जीवन होनी चाहिए। वैष्णव जीवन ऐसा होना चाहिए। उस जीवन से क्या लाभ जो वैष्णव ही हमसे विमुख हो जाए, हमसे द्वेष कर जाए या हमसे विरुद्ध चले, इस जीवन से कोई लाभ नहीं। शत्रु भी प्रशंसा करे, अब कैसा उजागर चरित्र रहा होगा। प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी ने भी काट दिया सर उस मेघनाथ का, रावण के पुत्र का, और सर जब भूमि पर गिरा, लक्ष्मण ने काटा तब, और उस समय मेघनाथ की पत्नी शायद सुलोचना या सुलक्षणा, मैं भूल रहा हूं कोई नाम था उसका, इंद्रजीत की पत्नी का, और वो पतिव्रता स्त्री थी और यज्ञ में बैठी थी अपने पति की रक्षा के लिए। बहुत ही तो उसका तपस्वी और पतिव्रता चरित्र रहा है मेघनाथ की पत्नी का, नाग कन्या थी वो। और उसके सामने जब उसके पति का सर आया तो रो, स्वाभाविक रोना है, और रावण भी दुखी था, अपने पुत्र उसके पहले उसका पुत्र मरा है, और मेघनाथ जो जिसका एक नाम इंद्रजीत था, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा था, इंद्र को जीत लिया था अपने बाहुबल भुजाओं से, मंत्र अस्त्र प्रहार से इंद्र को शरणागत कर लिया था, स्वर्ग को जीत चुका था, इंद्र को हरा चुका था, इसलिए इंद्रजीत था। लेकिन कितना हो इंद्रजीत हो, लक्ष्मण इंद्रिय जीत थे। लक्ष्मण कौन थे? इंद्रियों को जीते हुए थे। ये इंद्रजीत था लेकिन इंद्रियों को नहीं जीता। जो इंद्रिय जीत है, सद्गुरु रूप गोस्वामी वाचो वाणी, जो इंद्रियों को जीता है वो सर्वत्र जीत सकता है। किसके? लक्ष्मण जी राम सेवा में अपने इंद्रियों को पूर्णतः लगा दिए थे। जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे मूर्ख अविवेकी पुरुष हाड़ चर्म देह की सेवा करता है, कुछ नहीं सोचता शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, हाँ? वो अविद्या जिसको आवृत कर चुकी है, अज्ञानी देहात्म बुद्धि का राजा ऐसा मनुष्य देह के लिए कुछ भी करता है, ऐसे लक्ष्मण जी राम की सेवा कर रहे थे। क्या धर्म कर्म मतलब नहीं, उनको राम को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है सारी इंद्रियों को। 14 बरस तक रामायण प्रमाण है कि न निद्रा लिए, अब क्या कहना उनके लिए। नारी को तो छोड़कर ही आए थे उर्मिला को अवध में, उसके द्वारा सर कटा है ना। तब ये पूछती है रावण से कि मेरी पतिव्रता धर्म में क्या कमी है कि मेरे सामने मेरे पति का कटा हुआ सर। ये सुलक्षणा, मैं वास्तव में बोल रहा हूं सुलोचना या सुलोचना, दोनों में से एक नाम है, और रावण से अपने ससुर से रोते हुए पूछती है कि मेरे पतिव्रता धर्म में क्या कमी है कि मेरा पति का सर मेरे सामने है, और वास्तविक उनका प्रश्न है। तो रावण भी क्या उत्तर दे। रावण ने कहा कि बड़ा वीर था, तुम्हारे पतिव्रता में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने मरा पड़ा, ये तो सत्य है। अब इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, तब नहीं, इसको जलाने से पहले मुझे उत्तर देना पड़ेगा, कमी किस में है कि पति मरा है। अब रावण क्या उत्तर देगा। लेकिन रावण ने कहा कि देवी, इस बात का उत्तर तो श्री राम तुझे दे सकते हैं। बोले राम के पास जाऊं, वो मुझे उत्तर देंगे, वो तो शत्रु तुम्हारे, वो तो मैं उसको शत्रु माना हूं, वो किसी के शत्रु है नहीं। मैं उसको अपना शत्रु माना हूं, लेकिन राम तो किसी के शत्रु है नहीं। रावण ने कहा कि भले मैं उनका शत्रु हूं, अभी भी मैं मानता हूं उसको अपना शत्रु, और युद्ध भी चालू है, फिर भी तुम अगर उसके पास जाओगी, उनकी शरण में जाओगी या उससे कुछ पूछोगी, तो वो तुम्हें आत्मवत अपने ही समान हित करेंगे, प्रेम करेंगे। ये मुझे देखो, रावण युद्ध कर रहा है फिर भी राम जी के विषय में क्या सोच रहा है। शत्रु होते हुए भी राम का चरित्र कैरेक्टर कैसा रहा होगा कि शत्रु जिनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। अब विचारिए इस बात पर, सूक्ष्म बात है। और वो गई रावण के कहने से और पूछा कि क्या कमी है हमारे पतिव्रता धर्म में कि हमारा पति हमारे सामने मरा पड़ा है। राम ने बड़ा सुंदर कहा है कि देवी, तुम्हारे पतिव्रता धर्म में कोई कमी नहीं है, तब क्यों मरा? तो क्या लक्ष्मण की पत्नी हमसे ज्यादा प्रतिभा है? वो भी तब देवी थी, वो भी तब कर रही है उर्मिला। रावण ने कहा ना उसके प्रतिभा धर्म में कमी है, ना तुम में, और ना इन दोनों में बड़े, तो फिर रिजल्ट उल्टा क्यों है? तब रावण ने एक ही बात कहा, जो हम लोग के लिए, राम जी ने एक ही बात कहा जो भी हम लोग के लिए बड़ी प्रेरणात्मक है, दोनों वीर थे और तुम दोनों प्रतिभा हो, फिर भी विजय लक्ष्मण की हुई, उसका कारण यह है कि दूसरी पत्नी को मां समझने वाले इस राम के पक्ष से यह लड़ रहा था, और पराई स्त्री पर नजर डालने वाले उस रावण के पक्ष से तुम्हारा पति लड़ रहा था, संग दोष के कारण मारा गया। किस पक्ष में तुम हो यह भी काम, भले तुम्हारे में कितना बल हो, बुद्धि हो, तप हो, कर्ण की तरह ही हो जाओगे अगर विपक्ष है तब। कौशलेंद्रानुमोदितम होना चाहिए, शास्त्र गुरु और साधु भगवान के अनुकूल हो उनकी विजय है, अन्यथा भगवान से विपरीत, धर्म के विपरीत, वैष्णव साधु संप्रदाय के विपरीत कुछ तुम्हारी चेष्टा है, चाहे कितना हो बाहुबल हो, इंद्रजीत भी क्यों न हो, विनाश ही है। रामायण का इंद्रजीत और महाभारत का कर्ण हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम किस पक्ष में है, भागवत धर्म में है या कहीं और, भागवत से विरुद्ध, वैष्णव धर्म से विरुद्ध, भगवत प्रीति के विपरीत ये अनुकूल भक्ति है ही नहीं, तो शुद्ध भक्ति है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ पतनकारी चेष्टा ही हो जाएगी। तो राम का जवाब भी बड़ा सुंदर रहा कि भाई कमी तो नहीं, लेकिन अब धर्म अधर्म की कमी रह गई कि ये अधर्म के कारण विपक्ष में मारा जाए, अधर्म के कारण इनकी विजय है, क्योंकि मेरे संग में वो लड़ रहा है। लेकिन ये प्रसंग हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान राम अपने चरित्र से ये मधुर शिक्षा दे रहे हैं कि इतना साधु पवित्र हृदय हमें बनाना है कि शत्रु भी गुण गाए, प्रशंसा करे। ये राम के चरित्र के जो कुछ प्रधान गुण है उसमें एक तो प्रधान भक्त वत्सलता ही रहेगी कोई भी अवतार में, लेकिन उसके बाद भी ये गुण प्रकाशित होता है। और जहां तक स्वाना विभीषण चक्र की बात पर हम विचार करें इस श्लोक में, कि भगवान राम रावण के प्रति इतने दयालु थे, प्रभुपाद कहते हैं कि उनका मरने के बाद भी भला कराने के लिए विभीषण से कहे कि इनके लिए पिंड श्राद्ध आदि जो भी शास्त्रोचित कर्म होते हैं वो तुम करो, और विभीषण चक्रे, चक्रे शब्द का अर्थ किए, राम की इच्छा आज्ञा के अनुसार अपने रावण भाई के लिए और अन्य जो भी मरे थे, कई लोग असुर मर गए थे, उनके लिए कर्म किए। तो एक बात यहां झलकती है, क्या सुखदेव जी यह कहना चाहते हैं कि विभीषण तुम अपने भाई बंधु बांधव के लिए, तो क्या विभीषण के हृदय में अभी भी भाई के प्रति बंधु बांधव के प्रति ममता थी? स्वानाम तुम्हारे अपने प्रियजनों के लिए ये कर्म करो, तो मतलब भगवान राम क्या यह दिखाना चाहते हैं कि विभीषण जी तुम्हारे जो अभी भी तुम किसी को अपना मान रहे हो तो उनके लिए ये कर्म करो? नहीं, देखो विभीषण अपने आप में इतने ऊंचे भगत हैं, उनकी शरणागति रामायण में कुछ विशेष स्थान रखती है। विभीषण चरित्र से सबसे पहली शिक्षा तो हमें यह मिलती है कि पूरी लंका में असुरों का समाज, आदेशण का कुसंग की कितनी शास्त्रों में निंदा की गई है, इन कुसंगियों के बीच में रहकर भी भक्ति किया, बोलो ये विभीषण की सबसे बड़ी क्या कहे आज की भाषा में, मर्दानगी ही रही है। भक्तों के संग में भक्ति होना आज मुश्किल हो गया है इस घोर कलिकाल में, तो कुसंग के बीच में रहकर भी शुद्ध भक्ति किया नीति नियम से। हनुमान जी गए तो चकित रह गए कि वहां राम नाम निकल रहा है 3:30 बजे लंका में, तुलसी का क्यारा दिख रहा है, पवित्र मधुर वातावरण, सब घरों से हल्के हटके अलग था, मानो पूरे लंका, लंकावासी, लंकाधिपति के विपरीत चलना था उसको, और चले। विपरीत संग में भी भजन करना हम लोग के लिए शरणागति है, प्रतिकूल से भजन, प्रतिकूल को छोड़कर भागो, प्रतिकूल में रहकर भी भजन करना यह विभीषण है। बहुत कुछ बताया जा सकता है विभीषण के विषय में, लेकिन ये एक प्रमुख है। हनुमान जी ने जब पूछा कि कैसे हो रहा, राम जी ने भी जब बोले विभीषण आया तब यही पूछे कि उन दुष्टों के बीच में भजन नियम साधन कैसे कर रहे थे तुम बताओ, क्योंकि ये हो नहीं सकता जो तुमने करके दिखाया है, अद्भुत है विभीषण का ये। और शरणागति में भी, अब देखो विभीषण की बात यहां आई है नाम, तो हम कुछ बताना चाहते वाल्मीकि रामायण से और महाभारत में, व्यास और वाल्मीकि के वचन की पहले ही हमने चर्चा की, महाभारत व्यास जी उन दोनों में विभीषण जन्म में थोड़ा भेद है। विश्रवा पुलस्य ब्रह्मा जी के पुत्र और पुलस्य के हुए विश्रवा, और विश्रवा ने सुमाली की पत्नी कैकसी से लगन किया था विश्रवा जी ने, और विश्रवा ने उसके पहले भी लगन हो चुका था भरद्वाज की कन्या देववर्णी से। वाल्मीकि रामायण में इतिहास दिया गया है कि पुलस्य ऋषि कोई पर्वत गंधमादन या मेरु, मैं दोनों में से एक है मैं भूल रहा हूं, उस पर तप कर रहे थे पुलस्य जी, और ये त्रिण बिंदु नाम के राजा थे उस समय, और उसकी राजकुमारी कन्या के साथ ये जा रहे थे, कन्या विचरण करने जा रही थी उस उपवन में, और वहां वो ऋषि वेद पुलस्य जी वेद का अध्ययन कर रहे थे, और वो डिस्टर्ब हो रहा था उनको, ये राजकुमारी कन्याएं आती थी खेलती थी राजकुमारियों के साथ, त्रिण बिंदु की कन्या पुत्री, और उसको क्रोध हो गया पुलस्य जी को, उन्होंने श्राप दे दिया कि सुनो कल यहां एक भी लड़की तुम आई यहां तो मैं श्राप देता हूं कि तुम गर्भवती हो जाओगी बिना शादी के। शादी होने के बाद गर्भवती होना ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके पहले ये निंदा माना गया है समाज, इसके लिए भी कुछ अलग विचार रखते हैं, क्या क्या बात है इसमें भी छुपी है। एक ही कन्या पुत्रवती हो जाए तो सौभाग्यवती मानी जाती है अगर विवाह हुआ है तो, अदरवाइज नहीं तो सबसे बड़ी हेय मानी जाएगी इस कार्य के लिए ना। उस समय कन्याओं को अपनी मान मर्यादा का बड़ा महत्व था, आज तो छोड़ दीजिए बात ही कुछ और है। तो उस दिन वो राजा की कन्या आई नहीं थी जब ये ऋषि क्रोध में श्राप दे दिया, दूसरे दिन तो पता नहीं अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह चली गई वो वहां, और वो श्राप लग गया, वो तो ऋषि का वाक्य था ब्रह्मा जी के पुत्र का, और तुरंत ही शरीर पीला पड़ने लगा, शरीर में विकार जैसे महीने रहते हैं जो स्त्री में विकार उत्पन्न होते होने प्रारंभ हो गए। वो डर गई कन्या को शरीर में कुछ विपरीत चेष्टा हो रही है, जाकर पिताजी से गुरुजी से निवेदन किया, बात सामने खुल गई, सभी ऋषि पत्नियों ने आकर कहा उस स्त्रियों ने सखियों ने कि ये तो ऋषि का श्राप लग गया इनको, कल इन्हें बोला था कि जो भी वहां जाएगा वो गर्भवती हो जाएगी। अरे अब कैसे, सब राजा और सब गए शरण में पुलस्य जी की, महाराज ये हमको पता ना हमारी कन्या को ये आप क्या कर दी। बोले हम तो कल ही बोल दिए, ये सब आकर यहां डिस्टर्ब हो रहा था हा? लेकिन अब इसका उपाय बताओ प्रभु। उपाय एक ही है, राजा ने कहा आप इससे पाणी ग्रहण कर लीजिए, आपकी आपके ही श्राप से पुत्र प्राप्त हुआ है और आपकी पत्नी, और हे विशुद्ध आप जानते हो इसका कोई दोष नहीं है। पुलस्य जी ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि वेद पढ़ते पढ़ते मैंने श्राप लगा है, और वेद के विपरीत हमने क्रोध हो गया श्राप दिया था, हमारा कोई प्रयोजन तुमको दुखी करना नहीं था, लेकिन वेद पढ़ते पढ़ते तुम यहां आई तब भी मैं वेद पढ़ रहा था, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो वेद में बड़ा निष्णांत होगा, नाम विश्रवा, उसका जन्म ही वेद सुनते सुनते विशेष रूप में श्रवण करते करते प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम होगा विश्रवा पुलस जी ने रखा, और वास्तव में वो गुण थे उसमें, इतने तपस्वी और वेद के श्लोकों में निष्णान थे विश्रवा पुलस के पुत्र। अब तो ब्रह्मकुल में आ गए, ब्रह्मा जी के पुत्र के अंतर्गत आ गए विश्रवा जी, और वेद पठन में, और उससे जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ ये विश्रवा, और उस विश्रवा के तेज तपोबल को देखकर भरद्वाज जी प्रसन्न हो गए, अपनी कन्या देववर्णी से पाणी ग्रहण कराया उनका, विश्रवा और देववर्णी से पुत्र हुए वैश्रवण, जिसको कुबेर के नाम से हम जानते हैं, धनाध्यक्ष बने कुबेर, और कुबेर को पुष्प विमान मिला, सोने की लंका मिली, ये सब कुबेर के पास था हा? और उस कुबेर के तेज तपोबल को देखकर एक रसातल में रहने वाला रसूर जिसका नाम सुमाली, वो गया तो बोले इतना सोना इतना तेज इतना वैभव और खजांची स्वर्ग का किसका पुत्र है। बोले विश्रवा का पुत्र है, विश्रवा के वीर्य में इतना तेज है कि जिनका पुत्र इतना बड़ा बन सकता है। जाकर रसातल में अपनी पुत्री सुमाली अपने पुत्री कैकसी से कहा कि कैसे हो न हो तुम जाकर विश्रवा को बताओ उनसे शादी करो, और ये कैकसी आई विश्रवा के पास। उस समय वो अग्निहोत्र यज्ञ में निमज्जित थे, संध्या की बेला थी, और ये स्त्री ने उनको काम वासना में लपेट लिया, और तब कहा कि अब तो बेला गलत है, समय खराब है, भगवान का विधि विधान रहा है, पुष्ट पुत्र तो तुमको होंगे लेकिन बड़े दुष्ट कुंभकर्ण और राम, जैसे हम भागवत में उन हिरण्यकश्यप के इतिहास पढ़ते ऐसे ही चर्चा वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण और रावण के चरित्र में दी गई। तब रोने लगी ये कैकेयी, बोले मैं इसलिए जन्म यहां आई हूं कि मेरे अपहानि मेरी सब अपकीर्ति हो, मेरे गर्भ से ऐसे पुत्र हो। तब विश्रवा ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी के कुल को उजागर करने वाला एक महान भगवान राम का भक्त विभीषण भी अंतिम पुत्र तुम्हारे गर्भ से होगा।
वाल्मीकि रामायण में लिख,
तब ये प्रसन्न हुई। और कई हजार वर्षों तक विभीषण ने तपस्या की और ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो कुंभकर्ण रावण ने जो मांगा सो मांगा, लेकिन विभीषण ने वाल्मीकि रामायण प्रमाणित करती है कि भगवत चरणारविंद में प्रीति भक्ति की मांग की उसने, कोई भोग की आसक्ति नहीं मांगा विभीषण। मतलब जन्म से ही कुछ उत्कृष्ट गुण या दैवी गुणों से प्राप्त पुरुष है विभीषण। और शरणागति की जहां बात है, यहां स्वाना विभीषण चक्र पर अगर कोई विचार करे कि नहीं भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी ममता रावण के प्रति है, अगर रावण के प्रति ममता होती तो रावण वध का भेद ही क्यों बताता वो विभीषण। अगर भेद बताने वाले तो वही है लीला में, तो ये भी कल्प भेद से रामायण कई है, और एक रामायण में ये भी प्रसंग आता है कि रावण नहीं मर रहा था, तो भेद तो विभीषण ने बताया। मानो भगवान नहीं जानते थे कि ऐसे मरेगा, सर्वज्ञ जिसके लिए शास्त्र कहता है, विभीषण अगर बताए तब पता चलेगा उसको कि यहां बाण मारना है, नहीं। लेकिन भगवान वैष्णव जगत के सामने विभीषण की इस शरणागति को प्रकट करना चाहते थे कि विभीषण मेरा कितना शुद्ध शरणागत भक्त है, जो कोई उसके महत्व नहीं रखता, उनका बंधु बांधव स्त्री पुत्र कोई, मैं ही उसको महत्व रखता हूं। और यह विभीषण ने सार्थक किया, और विभीषण के लिए तो भगवान चूली पर चढ़ने के लिए भी तैयार है, ऐसी कथाएं भी प्राप्त होती है। और भगवान ने स्वयं अवध जीतकर लंकेश बनाया, तब तो लंका अब विभीषण की नगरी हो गई है, पहले जो भी था अब वर्तमान तो विभीषण की है। और विभीषण अयोध्या में जब गए थे पुष्प विमान पर, तो ऐसी भी कथाएं आती है, हम साउथ इंडिया में जाते श्रीरंगम, वो उन भगवान ने ही तो दिया था वो विग्रह उनको पूजा करने के लिए, क्योंकि अब तो पूरे वैष्णव है विभीषण। और क्या ऐसे विभीषणों की कृति अप्रीति अपने स्वजन में आदि में रह जाए, ये संभव ही नहीं। तब भगवान क्यों कहते हैं, प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि रावण के प्रति अकारण करुणा है, विभीषण की भक्ति में ना कोई डाउट है ना शरणागति में कोई अंतर, वो रावण के प्रति भी हितेशी है क्योंकि सुयोधम है। और मानव समाज को एक विशेष शिक्षा देना चाहते हैं कि कुछ भी किसी भी अवस्था में आप हो, अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण पिंड आदि क्रिया शास्त्रोचित करनी चाहिए। राम ने भी की दशरथ के लिए, हमारे श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु को क्या जरूरत है गया जाकर अपने जगन्नाथ पिताजी के श्राद्ध कर्म करने का, कोई जरूरत नहीं, लेकिन किया। आचार्य और भगवान अपने आचरण से साधारण जनता को शिक्षा देते हैं। भागवत धर्म बड़ा ऊंचा है, अब हम श्लोक नहीं डालना चाहिए वहां पर, वो उसके लिए है। भागवत में बोला गया है कृष्ण भक्त किसी का ऋणी नहीं है, यह भी सत्य है। नारद उधर नेमी की सभा में पितरो न ऋणी च राजन सर्वात्मना शरण्यम, या फिर हमारे आचार्य यमुनाचार्य या उन आचार्यों का पद हम गाते हैं माधवेंद्रपुरी संध्या वंदन भद्रमस्तु, वो उनके लिए है, हमारे जैसे कनिष्ठों के लिए। हम तो पूरा पूरा माया में है, भगत के संग में गुरु कृपा से दो पांच घंटा सेवा शरीर से बन से हो जाती है, वो भी अपराध वाली। और हम लोग फिर बनने बनने बढ़ जाए कि हमारे लिए कोई जरूरत नहीं करने की, तो हम पितरों को भी, अर्जुन जिसके लिए चिंता कर रहा है ना लुप्त पिंडो दक क्रिया, उसमें हम हो जाएंगे। हाँ, शुद्ध वैष्णव जो भगवत प्रीति प्राप्त किया है उनके लिए कुछ आवश्यक नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन उस लेवल का होना चाहिए ना। उस लेवल के होने के बाद भी आचार्यों ने किया, क्यों? मनुष्य को सिखाने के लिए। भगवान भी कहते हैं मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। इसीलिए हम वैष्णवों को चाहिए कि शास्त्रों के कुछ वर्णाश्रम धर्म से ऊपर भागवत है उसका अनुष्ठान हम करते हैं, उसमें सिद्ध हो जाए, और छोड़ना नहीं है, बीच छूट जाता है, लेकिन हम लोग क्या है, छोड़ देते हैं। भागवत भक्ति की सिद्ध अवस्था में ये कुछ धर्म कर्म छूट जाते हैं। ये जो श्लोक है ना माधवेंद्रपुरी का, वो कहे वो छोड़ना नहीं चाहते, वो कह रहे मैं करूं क्या, उस कंस के शत्रु के स्मरण करने से मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए पितर लोग आप हमें क्षमा करिए, हे संध्या आप हमें क्षमा करिए। लेकिन हम लोग तो दिन रात देहात्म बुद्धि में रहते, चिंतन स्मरण विषय का करते रहते हैं, और फिर उसका अनुकरण करें तो हम गलत पथ का निवेदन कर रहे हैं। मानो भगवान राम मनुष्य को शिक्षा के लिए ही आए हैं, इसलिए सिखा रहे कि विभीषण करो, नहीं तो विभीषण और राम के हाथों जो मरा है, और विभीषण जैसे भाई का भगत है, क्या उनके लिए विभीषण से बड़े भगत है कोई, या शरणागत भगत है? राम अवतार में हम सुन देख सकते हैं किसी को, किसी को नहीं, लेकिन फिर भी भगवान कराए। तो मानो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि अगर पापी हो, कर्म की गति दूरित हो, तो वो प्रेत बनता है, उसको शरीर नहीं मिलता, और दुष्ट शरीर दुर्गति में भी जाता है, लेकिन अगर श्राद्धोचित शास्त्र से किया जाए, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन आदि, भागवत आदि, कीर्तन आदि, तो कुछ ना कुछ जीव की दुर्गति से सदगति होती है, उनका मंगल होता है। हम वैष्णवों को तो कर्मकांड नहीं, वैष्णव अनुष्ठान के अनुसार उद्धार करा सकते हैं। जो ये नहीं जानते और श्राद्ध करते हैं उनका भी लाभ होता है कर्मकांड से, लेकिन हम लोग तो वैष्णव है तो वैष्णव उचित वैष्णव को भोजन कीर्तन भागवत, हाँ ऐसे वैष्णव अनुष्ठान से हमारे कुलों का कई उद्धार कर सकते हैं। जब नरसिंह मेहता की बात हम गुजरात में पढ़ते या भागवत में प्रहलाद की, तो सीधा लिखा गया 21 पेढ़ी तर जाती है उस भगत की। और भगवान के स्वभाव का वर्णन भी रामायण और भागवत दोनों में है, प्रणत काल रघुराय। जो वैष्णव बन जाता है उनके पूरे परिवार का भगवान मंगल करते हैं, दुर्गति नहीं होने देते। चैतन्य महाप्रभु तो उनसे भी दयालु है, सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते तुम्हार की कथा तुम्हार गामे रख रुकुर। सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने उस अमोक के प्रसंग में कहा कि तुम्हारा साला तो लगता था बने ही, अरे तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है, उनका भी मैं उद्धार करूंगा। तुम्हारे जैसे भगत जिस गांव में रह जाए ना, उस कुत्ते का मैं मंगल कर दूंगा। तब तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए का क्या कहना संबंधियों, लेकिन ये भगवान का अपना करुणा है, अपनी दया है, और वो करेंगे। लेकिन हमें उस अवस्था में न रहते हुए मानव समाज को गलत पथ पर नहीं लाना है। आज बड़ा पाखंड चल रहा है गुजरात में कई संप्रदायों में, भक्ति के नाम पर जीरो है, भागवत और वैष्णव के नाम पर जीरो है, और बस सहज्यावृत्ति में पढ़कर कुछ भाव दिखाकर कहने लग गए कि ये कुछ जानने की हमको जरूरत नहीं, हम तो बड़े ऊंचे हैं। और ये सब उसके अनुसार आ जाएंगे, जिसको अर्जुन कह रहे हैं वर्ण संकर या लुप्त प्रिय शास्त्र से गुरु, उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को शास्त्र गुरु के निर्देशन में इन शास्त्रों की शिक्षा को समझना है। ये सबके लिए सब नहीं होता, क्योंकि दोनों बात है, करना भी कहा गया है, मुक्त भी कहा गया है। अब हम किस अवस्था में है वो हम निश्चित नहीं कर सकते, शास्त्र गुरु साधु निश्चित करेंगे, है ना, कि हमारे लिए क्या है। तो बड़ा प्रेरणात्मक श्लोक है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रेत योनि में भी प्राप्त हो गया है, लेकिन पिंडदान करने पर उसका कुछ ना कुछ गति होता है। अब इसमें भी प्रश्न है, समय नहीं है, नहीं तो पद्म पुराण का भक्ति महात्मा का प्रसंग, वो गोकर्ण जाकर श्राद्ध भी किया था गया में, लेकिन फिर भी प्रेत पीड़ा से मुक्त धुंधुकारी, क्या कारण है? आप तो कह रहे हो कि श्राद्ध आदि कर्म गया श्राद्धम सतम कृत्वा, वहां तो व्यास जी ने लिखा है कि श्राद्ध का 100 बार गया में जाकर श्राद्ध किया फिर भी मुक्त नहीं हुआ, तो उसके लिए एड्रेस ही गलत था। एक संत बड़ा सुंदर बता रहे थे कि वो श्राद्ध करते हुए मंत्र पढ़ा जाता है, गोत्र पढ़ा जाता है, ये तो उसका था ही नहीं आत्मदेव का, वो किसी और का था। वो अगर बढ़िया सुंदर आपका पत्र हो लेकिन पता गलत हो तो उसके पास कैसे पहुंचेगा? तो श्राद्ध तो हो रहा था लेकिन जिसका नाम ले रहा था गोत्र का, वो उसका पुत्र था, वो एड्रेस ही गलत था, वो कहीं और जा रहा इसलिए भटक रहा था। ऐसे भटके हुए के लिए भी भागवत है। धन्या श्रीमती भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से भी जीव को मंगल कर देती है, भागवत के शब्दों में यह अद्भुत शक्ति है। तब जीते जी भाव से प्रेम से भगवत शरणागत लगे रहते हो, सुने उसके विषय में क्या कहना, उसके विषय में भागवत का मंगलाचरण सार्थक हो जाता है। हृदय अवृद्यते, भगवान हृदय में आ ही जाएंगे, और हृदयंतस्तो ही भद्राणी, उसका हृदय शुद्ध कर देंगे। इसीलिए रामचरित को, कृष्ण चरित को, उसके वैष्णव चरित को वैष्णवों से हमें बारंबार सुनना है, और स्नेह आदर श्रद्धा उत्साह पूर्वक सुनना है अगर हम हमारा मंगल चाहते हैं। इसी के साथ विराम करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो